ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से छठा स्कंध और नारद मुनि। ओके, दिस इज
हिंदी है क्या? हिंदी
हिंदी
हिंदी हिंदी
प्रजापति दक्ष के द्वारा नारद मुनि को शाप, वो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। 20 शास्त्रस्य पितुरादेशम् यो न वेद निवर्तकम् कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्। शास्त्रस्य पितुरादेशम् यो न वेद निवर्तकम् कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्। शास्त्रस्य पितुरादेशम् यो न वेद निवर्तकम् कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्। शास्त्रस्य पितुरादेशम् यो न वेद निवर्तकम् कथं तदनुरूपाय गुणविश्रम्भ्युपक्रमेत्। शास्त्रस्य पितुरादेशम् यो न वेद निवर्तकम् माताजी। शब्दश अनुवाद शास्त्रस्य शास्त्रों का, पितुः पिता का, आदेशम आदेश, यह जो कोई, वेद समझता है, निवर्तकम जो जीवन की भौतिक शैली का अंत कर देता है, कथम कैसे, तत् अनुरूपाय शास्त्रों के आदेश का पालन करने के लिए, गुणविश्रम भी प्रकृति के तीन गुणों में फंसा व्यक्ति, उपक्रमेत संतति उत्पन्न करने के काम में लग सकता है। अनुवाद तथा तात्पर्य इसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। नारद मुनि ने पूछा था कि मनुष्य किस तरह अज्ञानवश अपने ही पिता का आज्ञोल्लंघन कर सकता है। हरियशो ने इस प्रश्न का अर्थ समझ लिया था, तो वो अर्थ इस प्रकार है, मनुष्य को शास्त्र के आदि आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को द्वितीय जन्म के चिन्ह रूप में यज्ञोपवित जनेऊ प्रदान किया जाता है। वह प्रामाणिक गुरु से शास्त्रों के आदेश प्राप्त कर चुकने के फलस्वरूप दूसरा जन्म पाता है, इसलिए शास्त्र असली पिता है। सारे शास्त्रों का आदेश है कि मनुष्य अपने जीवन की भौतिक शैली को समाप्त कर दे। यदि वह पिता के आदेशों का उद्देश्य नहीं समझता तो वह अज्ञानी है। जो पिता अपने पुत्र को भौतिक कार्यों में लगाने रखने का प्रयत्न करता है, उसके वचन पिता के असली आदेश नहीं होते। तात्पर्य, तात्पर्य थोड़ा लंबा है तो आधा तात्पर्य पढ़ेंगे, उसके ऊपर विचार करके बाद में आधा पढ़ेंगे। भगवद गीता का कथन है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा। असुरगण जो मनुष्य से न्यून है किंतु पशु नहीं कहलाते, वे प्रवृत्ति तथा निवृत्ति अर्थात करणीय कार्य तथा अकरणीय कार्य का अर्थ नहीं समझते। भौतिक जगत में हर व्यक्ति भौतिक जगत का यथाशक्य प्रभुत्व जताना चाहता है, यह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। किंतु सारे शास्त्र निवृत्ति मार्ग का उपदेश देते हैं, अर्थात भौतिकवादी जीवन शैली से छुटकारे की सलाह देते हैं। वैदिक सभ्यता दुनिया में सबसे पुरानी है। शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य शास्त्र भी इस बात पर सहमत है। उदाहरणार्थ बौद्ध शास्त्रों में भगवान बुद्ध यह उपदेश देते हैं कि भौतिकवादी जीवन शैली त्यागने पर मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर सकता है। बाइबल भी एक शास्त्र है, उसमें भी यही उपदेश मिलेगा कि मनुष्य भौतिकवादी जीवन का अंत कर दे और भगवत धाम वापस जाए। हम किसी भी शास्त्र की परीक्षा करें, विशेषतया वैदिक शास्त्र की, तो हमें तो यही उपदेश दिया जाता है कि मनुष्य अपने भौतिकवादी जीवन का परित्याग करे और अपने आदि आध्यात्मिक जीवन में वापस आए। शंकराचार्य ने भी यही निष्कर्ष प्रतिपादित किया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह भौतिक जगत या भौतिकवादी जीवन केवल माया या भ्रम है, अतएव मनुष्य अपने मायामय या भ्रामक कार्यों को बंद करके ब्रह्म पद को प्राप्त करें। शास्त्र शब्द विशेषतया वैदिक ज्ञान ग्रंथों का द्योतक है। साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व, ये चारों वेद तथा इन वेदों से ज्ञान प्राप्त करने वाले अन्य ग्रंथ वैदिक ग्रंथ माने जाते हैं। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतएव यह ऐसा शास्त्र है जिसके उपदेशों को विशेष रूप से मानना चाहिए। समस्त शास्त्रों के इस सार में कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि मनुष्य अन्य सारे कर्तव्यों का त्याग कर उनकी शरण ग्रहण करे। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। मनुष्य को शास्त्र के नियमों का पालन करने की दीक्षा दी जानी चाहिए। दीक्षा देते समय कृष्ण भावना मृत आंदोलन मनुष्य के शास्त्र के परम वक्ता कृष्ण से उपदेश लेते हुए भौतिकवादी जीवन शैली के सिद्धांतों को भुलाकर शास्त्र के निर्णय को प्राप्त करना चाहिए की मांग करते हैं। इसलिए हम जिन सिद्धांतों की सलाह देते हैं वे है अवैध यौन, नशा, जुआ खेलना तथा मांसाहार, इन सब का निषेध। इन चार प्रकार के निषिद्ध कार्यों के त्याग से बुद्धिमान व्यक्ति भौतिकवादी जीवन से मुक्ति पालेगा और भगवत धाम वापस जा सकेगा। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణ చైతన్య నామ్నే ఘోర త్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోసుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. सबसे पहले मैं आप सबके चरण में प्रणाम करके क्योंकि हम अभी भागवत जो पढ़ रहे हैं वो अमल पुराण है जिसका व्याख्या सिर्फ आचार्य लोग जो परमहंस हैं वो कर सकते हैं. लेकिन बल्कि हमारी कुछ योग्यता नहीं है फिर भी हम भागवतम के ऊपर टिप्पणी करते हैं ताकि हम शुद्ध हो और जो सुनते हैं उनका भी शुद्धिकरण हो. तो प्लीज स्पेसिफिकली आई रिक्वेस्ट ऑल द सीनियर डिवोटीज सो दैट दे कैन ब्लेस. तो ये भागवतम का जो सेक्शन चल रहा है उसमें प्रजापति दक्ष अलग अलग बार प्रजोत्पत्ति करते हैं और नारद मुनि आके वो सब जितने भी पहली बार उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया. लेकिन नारद मुनि आके सबको जो वैराग्य विद्या का ज्ञान देके जय श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौनिताय की, श्रील प्रभुपाद की. तो जब पहले जो 10,000 उनके पुत्र थे वो चले गए घर से वापस फिर न आने के लिए कभी भी, तो दक्ष बहुत उनके हृदय का ऐसा चोट लगा. लेकिन वो कुछ बोल नहीं सके. क्यों? क्योंकि नारद मुनि है वो बहुत पहुंचे हुए और माने हुए भक्त हैं, तो उनको क्या बोलेंगे वो. तो उन्होंने वापस अपने जो सेवा है उसके अंतर्गत और 1,000 पुत्रों की उत्पत्ति की. ये प्रजा की उत्पत्ति है वो भी भगवान ने ही उनको वो सेवा दी थी क्योंकि वो प्रजापति हैं और उनका यही सेवा है कि पूरे जगत में अलग अलग योनियों के द्वारा सब जीव भरे हुए रहे ताकि ये भौतिक जगत चले. तो उसके द्वारा अगर वो क्रिया करते हैं तो वो भी भगवान के ही आदेश से कर रहे हैं. लेकिन हम देखते हैं यहां पे जब दूसरी बार ये घटना हुआ तो ये जो चल रहा है वो दूसरे बार का वृत्तांत चल रहा है. जैसे नारद मुनि आए वापस और अब की बार उनको ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उन्होंने सिर्फ बोला कि आप अपने जो भाई है उनके चरणों पे आप चलिए, वही सभ्यता है. तो यहां पे जब पहली बार आए थे नारद मुनि तो उन्होंने अलग अलग जो उनको भक्ति के बारे में या वैराग्य के बारे में बोला था तो वो इतना बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं, सूत्र रूप में उन्होंने कुछ चीजें उनके सामने रखा। क्यों? क्योंकि जो हरियश्वस थे वो इतने उन्नत थे उनके चेतना में, उनके बुद्धि में, कि उनको और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने सिर्फ सूत्र रखे। तो एक सूत्र ये था कि पिता के आदर्शों का पालन करना चाहिए। तो ये जो हरियश्वस थे उन्होंने समझा कि ये पिता मतलब कौन, जो असली गाइडेंस देता है, जो असली रूप से किसी को उसका जो गोल है उसके लाइफ का, जीवन का लक्ष्य है, उसके बारे में उसको आगे बढ़ाता है पिता। जैसे भागवत में बताते हैं कि गुरु न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात। तो उसमें बोलते हैं कि भागवत में बताता है कि व्यक्ति को पिता माता या गुरु या अन्य कोई भी व्यक्ति जो उनके जो भी सहायक लोग हैं, उनका जो भी इंचार्ज है, वो नहीं हो सकते हैं तब तक जब तक वो उतना उनका कैपेसिटी नहीं है कि अपने जो नीचे के लोग हैं उनको मृत्यु से बचाए। मृत्यु से बचाए मतलब भगवत धाम का रास्ता उनको दिखाए। तो यहां पे उन्होंने समझा कि ये जो नारद मुनि बोल रहे हैं कि पिता का आदेश पालन करना चाहिए, तो वो पिता कौन है? प्रभुपाद। यहां पे देख सकते हैं कि प्रभुपाद कितना अच्छे से अनुवाद करते हैं, ऑलमोस्ट लाइक परपोर्ट ओनली। तो बहुत विस्तृत रूप से अनुवाद करते हैं कि वो पिता कौन है। वो पिता है अपने जो शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, जो सब जीवात्माओं का उद्धार के लिए बनाए हैं, और उनका जब हम आचरण करते हैं, सुनते हैं, तो हमारा भौतिक चेतना से मुक्ति होके हम आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होते हैं। तो यहां पे प्रभुपाद बताते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दो शब्द आए हैं ये तात्पर्य में। तो प्रवृत्ति मतलब प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो जगत है उसके ऊपर प्रभुत्व जताने का प्रयास करना, उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। ये दुनिया में उपभोग लेने की जो कामना है उसकी तहत जब हम कार्य करते हैं तो वो है प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग है जो ये दुनिया में हम काम करते हैं, कार्य करते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उसका उद्देश्य यह रहता है कि ये दुनिया से हमको परे जाना है। तो वैसा जो कार्य है उसको बोलते हैं निवृत्ति मार्ग। और प्रभुपाद यहां पे बोलते हैं कि जब कोई आध्यात्मिक रूप से दीक्षा लेता है, ग्रहण करता है, तो पहली ही उसके स्टेप में हम बताते हैं कि नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। तो ये चार जो गलत चीजें हैं उनसे हमको दूर रहना है। तो ये जो निवृत्ति का मार्ग है वो ये है कि ये भौतिक जगत में जब हम रहते हैं तो ये भौतिक कार्य और भौतिक जो गुण हैं उनके जो प्रभाव है उनमें आके हम अपना कार्य न करें, बल्कि वो प्रभाव से बाहर आके हम भगवान की भक्ति करें और हमारे हृदय को शुद्धिकरण करके हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। यहां पे बोलते हैं कि प्रभुपाद बहुत अच्छे से यहां पे बताते हैं जो वेद है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम सिर्फ वेद शास्त्रों को ही मानते हैं और कुछ नहीं मानते, तो आप हमें असली वेद दिखाओ। लेकिन प्रभुपाद यहां पे बोलते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ये सब वेदों का निचोड़ है कृष्ण को जानना। अगर कोई कृष्ण को नहीं जानता है तो कितने भी वो वेद पढ़ा क्यों न हो, कितने ही वो श्लोक नो उसको ज्ञात हो, उसका कुछ फायदा नहीं है। जैसे प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे तो उनको बहुत लोग मिलने के लिए आते थे, तो उसमें से कुछ वेदांतिस्ट जो वेद के ऊपर बहुत गहरा अध्ययन करने वाले लोग भी आते थे उनके पास। तो एक बार जब वो आते थे मिलने के लिए तो प्रभुपाद उनसे बात करते थे, तो प्रभुपाद ने जब ऐसे वेदांतिस्ट आए थे तो उनको पूछा कि भगवान कौन है। तो जो वेदांतिस्ट थे जो वो एक दूसरे की तरफ देखे और बोले कि स्वामी जी ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो बहुत गुड है और उसको समझने के लिए बहुत कार्य बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ता है और ये एकदम दो मिनट में हम नहीं बता सकते हैं, तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि ये ब्रह्मन क्या है और ये सृष्टि का उत्पत्ति कैसे होता है वो वगैरह। तो प्रभुपाद हंसे और वहां पे गुरुकुल के लड़के खेल रहे थे, तो प्रभुपाद ने एक लड़के को बुलाया कि आ जाओ यहाँ पे, और वो लड़का बहुत भागते आया क्योंकि उसको पता था प्रभुपाद जब भी बुलाते तो प्रसाद भी देते हैं इसके बाद तो वो भागते आया तो प्रभुपाद ने पूछा कि भगवान कौन है। तो एक सेकंड का भी उसने व्यय न करके तुरंत उत्तर दे दिया, बोला कृष्ण भगवान है। और प्रभुपाद ने उसको एक रसगुल्ला दिया, वो नाचते नाचते चला गया। तो बाद में प्रभुपाद बोल रहे थे कि देखो आप इतना सब पढ़ाई करके जो बात नहीं बता सकते वो एक गुरुकुल का 5 साल का लड़का बता रहे हैं, तो इससे हमको जानना चाहिए कि जो वेद है उनका जो मकसद है उनका जो वो क्यों है। भगवद्गीता में वो हम जानते हैं कि कृष्ण को जानने के लिए है वो, और कृष्ण को हम कैसे जाने, कृष्ण को हम तभी जानेंगे जब हम कृष्ण के मुखारविंद से जो आते हैं वाणी जो भगवद्गीता है वो सुनेंगे। और वो भगवद्गीता का सार है, प्रभुपाद हमेशा ये श्लोक कोट करते हैं, भगवद्गीता का सार क्या है, किसी को भी पूछे स्पेसिफिकली इस्कॉन में भगवद्गीता का सार क्या है तो कोई बच्चा भी बता सकता है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये जो श्लोक है वो वही जो निवृत्ति मार्ग का ही द्योतक है। भगवान ये नहीं बताने के लिए आते हैं कि आप यहां पे बहुत दुख झेल रहे हो तो ठीक है मैं आप कुछ मदद करूंगा, कुछ एडजस्टमेंट करता हूं यहां पे तो आप सुख में चैन से यहां पे रह सकते हैं। नहीं, भगवान यहां पे आते हैं और दुख देख के ये बताने के लिए आते हैं कि ये हमारा जगह नहीं है, हमारा असली जगह है भगवद्धाम। तो ये जो निवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग इसका मतलब प्रभुपाद वो धर्म जो पुस्तक है छोटा उसमें बताते हैं कि निवृत्ति मतलब भगवान के लिए कार्य करना, ताकि वो कार्य करते वक्त हमारा शुद्धिकरण हो और हम भगवद्धाम जाए वापस। तो ये जो भक्ति योग है वो जैसे प्रभुपाद कल बहुत अच्छे भागवतम में बता रहे थे कि भक्ति योगा और वैराग्य विद्या वो एक ही है, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हैं तो उसमें बोलते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम। तो ये जो भक्ति योग है और जो वैराग्य विद्या है वो एक ही है। क्यों? क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान के प्रति हमारा आकर्षण होता है और उससे भौतिक आकर्षण से हमारा मुक्ति हो जाता है। दूसरा ये जो तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो पद्धति है जो व्यक्ति का उन्नतिकरण होता है उसके चेतना में उसके व्यवहार में वो होता है अलग अलग संस्कार जब हम प्राप्त करते हैं तो। और ये संस्कार ये वैदिक रीति से हम देख सकते हैं, जैसे जनेऊ संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है और अंत संस्कार होता है। तो ये अलग अलग संस्कार है जिससे व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। प्रभुपाद यहां पे बताते हैं कि जन्मजा जायते शूद्र संस्कारात भवेत द्विजः, वेद पाठात भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वो शूद्र की तरह ही है, क्योंकि उसको वो अज्ञान में है, उसको कुछ पता नहीं है जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण लेता है तो वो गुरु से उसको ज्ञान प्राप्त होता है कि ये सब क्या है, ये भौतिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। तो यहां पे बताते हैं चैतन्य चरितामृत में भी आता है, जन्म जन्मे सबे माता पिता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले बज हरि यही। तो विशेष जन्मे जन्मे सबे माता पिता पाए, दैट हरेक अपने जीवन में हरेक को माता और पिता का लाभ होता है, लेकिन जो गुरु और कृष्ण हैं वो बहुत मुश्किल से हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। इसलिए बोलते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में घूम के घूम के हजारों लाखों साल के बाद ये स्थिति पे आता है कि उसको एक आध्यात्मिक सच्चे गुरु की शरण प्राप्त होती है। तो यहां पे जो ऐसे भक्तों के संग में आने से, ऐसे गुरु के संग में आने से और जो वैदिक शास्त्र है उनके आदर्शों को पालन करने से हमारे जीवन में वो ये भौतिक जीवन से छुटकारा पाने की इच्छा आ जाती है, क्योंकि वो इच्छा ये भौतिक जीवन से परे जाने की वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इच्छा है जो है वो सिर्फ ये जीवन में दुख भोगने से नहीं आती है। जैसे एक दिन हम जा रहे थे रिक्शा से, तो रिक्शा वाला जा रहा था, बीच में 5-10 मिनट बाद वो पीछे देखा और बोला कि स्वामी जी हमको भी संन्यास लेना है आपके जैसा। बोला क्या हो गया? बोला पत्नी बहुत त्रस करती है, लड़के सुनते नहीं है और अभी पेट्रोल का भाव भी बढ़ गया है, तो क्या 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 करें हम, हमको भी संन्यास लेना है, आप हमको बताओ कैसे क्या करने का। हम बोले कि आ जाओ मंदिर में, वही तो प्रॉब्लम है टाइम नहीं मिलता है हमको, है ना, लेकिन हमको ना बनना है। तो ये जो है वो जो वैराग्य दिखा रहा है वो असली वैराग्य नहीं है, वो एक निराश हो गया है अपने जीवन में कि है ना ये सब फालतू है। लेकिन उसका हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अभी आध्यात्मिक रूप से प्रगत हो गया है, उस बहुत वैराग्य भर गया अभी, तो वैसा नहीं है वो, क्योंकि जो निराशा है वो उसमें हम देख सकते हैं। अगर कोई निराशा में आ जाता है ना, बहुत बड़े बड़े काम करता है और वो फेल हो जाते हैं, तो उसके पास अब जाके पूछो तो ऐसा फिलॉसफी देगा लगेगा ये तो भागवतम दे सकता है। कोई व्यक्ति है किसी रिश्ते में चोट खाया है या कोई डाइवोर्स है, उसके पास जाके पूछो आप तो आपका क्या है, तो बोलेगा ये जगत पूरा इसमें कुछ नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है, सब लोग तो ये सुन के हमको लगेगा कि ये तो पूरा साक्षात्कार हो गया, वैष्णव सिद्धांत पे बोल रहे हैं। लेकिन वो वैष्णव सिद्धांत नहीं है, क्यों? क्योंकि वो बहुत कम समय रहता है वो, जैसे स्मशान वैराग्य बोलते हैं, लोग जाते हैं स्मशान में, जब जला के आते हैं तो जब आते हैं सब लोग तो वो यही बोलते हैं जीवन बहुत क्षणिक है, सबको एक दिन जाना है। तो ये सब बातें करते हुए आते हैं और 10 मिनट बाद वो टीवी के सामने बैठ के पिक्चर देखने लगते हैं। तो ये जो है वो निवृत्ति मार्ग नहीं है, वो लगता है कि वो अभी जस्ट निवृत्ति मार्ग का के लिए चालू किया है उसने, प्रस्थान किया, लेकिन जब तक हम भक्तों के मुख से सुनते नहीं हैं, जो साक्षात्कार है जीवन में, जो एक्चुअल जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो साधु के मुख से सुनने से ही आता है, वो सिर्फ ये दुनिया के दुखों से नहीं आता है वो। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शास्त्र का और गुरु का सहायता लें, क्योंकि सिर्फ दुख भोगने से कोई भक्त नहीं बनता है। ऐसा होता था तो जो भी झोपड़पट्टी वाले हैं सब अभी भक्त होते थे, रोज मंगलारती होता था वहां पे डांसिंग, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसका उत्पत्ति सिर्फ भक्त और भगवान वही दे सकते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि ये जानना कि बहुत लोग दुख भोगते हैं, तो फिर क्यों वो उनके हृदय में सच्चा वैराग्य प्राप्त नहीं होता है, होना चाहिए जैसे बोल रहे हैं वो, तो वो रहता क्यों नहीं है। तो यहां पे बोलते हैं कि जो गुण विश्रम्भ्य उपक्रमेत, ये जो गुण विश्रम्भी मतलब प्रकृति के तीन गुणों में फंसा व्यक्ति, तो जो गुण के ऐसा कार्य करते हैं जो गुण आदमी के ऊपर, जैसा कोई व्यक्ति है दिन भर पूरा बहुत मेहनत करता है, आते जाते 2-4 घंटे ट्रेन में लटक के जाता है, वहां पे जाके बॉस का बहुत मारपीट करता है उसको, पूरा उसका जो एनर्जी है पूरा निचोड़ के वापस आ जाता है, तो उस लेकिन जब आता है ये तो टीवी के सामने बैठता है, उसके सगे संबंधी होते हैं तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो जो जो भी गलत हुआ उसके साथ पूरे दिन में वो सब भूल जाता है, वो कुछ क्षणों में ही भूल जाता है, और दूसरे दिन विथ रिन्यूड विगर है ना, बहुत उत्साह के साथ वो बाहर निकलता है कार्य करने के लिए। तो एक भक्त बता रहे थे कि कैसे ये जो रजोगुण और तमोगुण है, रजोगुण से क्या होता है, कार्य करने की बहुत उत्साह प्राप्त होता है, और रजोगुण के कारण ही हमारा बहुत बार मारपीट होता है, क्योंकि रजोगुण में जब हम कार्य करते हैं उसका रिजल्ट तो हमेशा दुखदायी ही होता है। तो रजोगुण से हमको दुख प्राप्त होता है, और तमोगुण से क्या होता है, हम भूल जाते हैं उसको। तो दुख होता है रजोगुण से, और बाद में तमोगुण उसको आच्छादित कर देता है, बोलता है कुछ डोंट वरी है ना, ठीक चल रहा है ना, दुनिया इतने भी बुरी नहीं है, कुछ लोग हैं अच्छे हैं, तो भूल जाता है, बाद में वापस रजोगुण आता है, वापस वो कार्य करता है। तो ये गुण के कारण वो व्यक्ति फंस जाता है, जैसा जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेन होता है कभी कभी, तो डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया देता है ना, वो पूरा बधिर हो जाता है, उसका सेंसेशन खत्म हो जाता है। तो जो तमोगुण है वैसा है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका जो अनुभव है जो वेदना का, उसको वो मिटा देता है वो कुछ देर के लिए, तो हमको लगता है कि ठीक चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो दूसरे दिन वापस वो वही चीज करता है जिससे वो खुश नहीं था कल, आज वो सेम चीज करता है। क्यों? क्योंकि ये गुण जो है हमारे जीवन में ऐसे नचाते हैं हमको। तो ये जो गुण से बाहर जाने का विधि है वो हमको शास्त्रों के द्वारा मिलता है। प्रभुपाद यहां पे बोलते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिकवादी जीवन से विरक्त होकर भगवान के पास लौटने की उस उच्चतर ज्ञान की शिक्षा देता है, किंतु दुर्भाग्यवश बहुत से माता पिता इन आंदोलन से अधिक संतुष्ट नहीं है। हमारे छात्रों के माता पिता के अतिरिक्त अनेक व्यापारी जन भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि हम अपने छात्रों को नशा, मांसाहार, अवैध मैथुन तथा जुआ खेलना छोड़ने की शिक्षा देते हैं। यदि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार होता है तो तथाकथित व्यापारियों को अपने कसाई घर, अपनी तथा सिगरेट फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ेंगी, इसलिए वे भी अत्यंत भयभीत हैं। किंतु हमारे पास अपने शिष्यों को भौतिकवादी जीवन से अपने को छुटकारा दिलाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। हमें उन्हें भौतिक जीवन से विपरीत जीवन की शिक्षा देना चाहिए, जिससे हम उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से बचा सके। तो हम देखते हैं कि सामान्यतः भौतिक जो व्यक्ति है वो इंद्रिय का उपभोग छोड़ने की इच्छा नहीं होता है उसमें। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका जो उन्नतीकरण है भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन तक, वो एक बहुत क्रिटिकल पीरियड है जो गुरु और शास्त्र करते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत बार हम देखे हैं, जब हम भगवद गीता देने के लिए जाते हैं तो एक व्यक्ति बता रहा था, वो बता कि ये अभी मैंने घर अभी जस्ट बनाया है, इसलिए मैं भगवद गीता नहीं ले रहा हूं। तो बोला कि ये भगवद गीता का घर का क्या संबंध है बाबा? तो बोला नहीं, वो जो वो क्या बोलते हैं, वास्तुशास्त्र है, उसका मैंने वास्तुशास्त्र के द्वारा मैं घर बनाया, और जो वास्तुशास्त्र का जो है वो बोला कि भगवद गीता मत रखो घर में, क्यों? वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा। भगवद गीता पहला ही वर्ष है, कुरुक्षेत्र है ना, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो बोला वो नहीं रखने का। तो लोग बोलते हैं हमारा घर ना अच्छा है, अभी कुरुक्षेत्र हो जाएगा। वो ऐसा बात करते हैं जैसे अभी उनका घर वैकुंठ है, कुछ एकदम सब लोग आनंद में विहार कर रहे हैं, और भगवद गीता लाएंगे तो बहुत झगड़ा हो जाएगा। तो ये जो गलत धारणाएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो जो भौतिक जीवन है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी हालत में। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि जो शास्त्र हैं वो भगवान खुद बनाते हैं। जैसे बोलते हैं कि मायामुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण। तो जो माया में फंसा व्यक्ति है उसको खुद के आधार पे, खुद के ज्ञान के, बुद्धि के आधार पे वो ये जान नहीं सकता है कि वो क्यों वहां पे फंसा है। तो इसीलिए भगवान जीवेर कृपाय कैल कृष्ण वेद पुराण, तो ये ऐसे जीव जो फंसे हैं उनको कृपा करने के लिए भगवान वेद और पुराण की रचना करते हैं। तो ये वेद पुराण जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम देख सकते हैं, अभी ये भारत में भी कितने सारे जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घटे हैं अपने भारत में, कितने सारे बाहर के लोग आके यहां पे राज्य किए, ब्रिटिश लोग आके 200 साल राज्य किए, मुगल्स आके राज्य किए, पोर्तुगीज थे, बाद में अलग अलग व्यक्ति आए। तो अगर हम पूरे विश्व का इतिहास देखेंगे तो अगर कोई देश बहुत बड़े ज्यादा समय पर अगर बाह्य जो लोग आते हैं उनके अधीन हैं तो उसका पूरा संस्कृति चेंज हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं कि अमेरिका में ब्रिटिश लोग गए तो भी वो इट्स लाइक वी नेवर फाइंड इवन ट्रेस ऑफ दैट प्रीवियस कल्चर, वो कल्चर पूरा धुल गया। अभी जो है वो नया कल्चर है। लेकिन हम भारत में देख सकते हैं कि इतने सारे बाह्य आक्रमणों के बाद भी हमारा जो संस्कृति है वो बचा है, क्यों? क्योंकि ये वेद और शास्त्रों के कारण, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, उनके ऊपर अभी भी लोगों का श्रद्धा है, उनका पठन होता है, उनका आचरण में आते लेते हैं लोग, मंदिर में आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जो आध्यात्मिक संस्कृति है वो ऐसे वेद शास्त्रों के ऊपर ही वो टिकी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवद्गीता पढ़ना, भगवद्गीतों का वितरण करना। इसलिए प्रभुपाद और प्रभुपाद के जो गुरु है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो इतना उसके ऊपर बल देते थे कि जो शास्त्र है उनका इतनी मात्रा में प्रसार हो। तो इससे जो जो आध्यात्मिक उन्नति होता है वो ये शास्त्रों के द्वारा ही होता है, जब हम शास्त्र सुनते हैं। तो शास्त्र नहीं सुनेंगे तो अपने आप से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, इतना भी नहीं जान सकते कि हम क्यों दुख भोग रहे हैं। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जब आते हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए तो यही बताते हैं, बोलते हैं कि लोग तो बहुत कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं और हम इतने पागल हैं कि हम भी सोचते हैं कि हाँ हम बुद्धिमान हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ये है कि हमको ये भी पता नहीं कि हम कौन है, भगवान कौन है और ये दुनिया में हम दुख क्यों भोग रहे हैं। तो हम इतने ज्ञानी हैं कि हमको ये भी पता नहीं कि हम कौन है और ये दुख का कारण क्या है। तो ये जो भौतिक ज्ञान है वो उससे हमको, ये जो भौतिक जीवन है उससे उद्धार नहीं हो सकता है, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान और वो भी प्रामाणिक जो गुरु है उसके आश्रय में जाके हम जब पढ़ते हैं तभी हमको प्राप्त हो सकता है वो। तो ये जो वेद शास्त्र है वो हमको प्रेयस और श्रेयस, ये प्रभुपाद कल बहुत अच्छे तरह से बता रहे थे भागवतम में कि जो वेद शास्त्र कहां पे आता है, क्या उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जो वेद शास्त्र है वो हमको बताता है कि प्रेयस क्या है और श्रेयस क्या है। प्रेयस मतलब शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, बहुत एकदम अभी के दुनिया में लोगों को वही चाहिए, दे वॉन्ट सूप इन वन मिनट, दे वॉन्ट वॉशिंग इन वन मिनट, दे वॉन्ट जूस इन वन मिनट, दे वॉन्ट एवरीथिंग इन वन मिनट। तो हम देखते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, चुटके बजाओ और सब होना चाहिए। तो ये जो छोटे बालक है या जो कम बुद्धिमान है वो, उनको लगता है कि अब अगर मेरा छोटे समय के लिए मैं खुश हूं तो वो करने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो सोचता है कि मेरे लिए व्हाट इज बेस्ट इन लॉन्ग रन, जो ज्यादा दूर का सोचता है वो, दूरदृष्टि होता है उसका, उसको बोलते हैं प्रेयस, सॉरी श्रेयस। सो श्रेय मतलब जिसका दूर देखता है और प्रेय मतलब वो बहुत पास में देखता है। तो शास्त्र हमको बताते हैं कि ये श्रेयस क्या है। श्रेयस्कर मतलब जो भगवान की हम भक्ति करते हैं उसमें कुछ बाधाएं भी हो सकती हैं, लेकिन वो हमको जो उच्चतर जो आनंद की अनुभूति करा सकता है। तो वो शास्त्रों का हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वो हमको बताते हैं। वैसा प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण दिए थे, कल बोले थे प्रभुपाद बोले थे कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये दुनिया में हर एक को अपना अस्तित्व कायम रखने की बहुत इच्छा होती है, उसके लिए बहुत परिश्रम करता है वो, लेकिन प्रभुपाद बहुत अच्छे तरह से बता रहे थे कि वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्यों होता है, उसका सोर्स क्या है। तो बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति, जो धरती पर रहने वाला कोई व्यक्ति है, उसको अगर उठा के समुद्र में रख दे हम, तो दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो वो जीवन बचाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, हाथ पैर मारेगा। तो वहां पे बता रहे थे कि वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, वो अपने अस्तित्व को कायम रखने की चेष्टा है उसकी। उसको आप ये ज्ञान देके कि आप चिंता मत करो, मैं आपको बताता हूं कैसे स्विमिंग करने का, थोड़ा स्किल देता हूं आपको, या आपको कुछ वहां पे खाने के लिए देता हूं। तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बंद नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक आप वापस धरती पे नहीं आते हैं। तो हमारे सिर्फ कार्य करने की जो शक्ति है उससे हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस से बाहर नहीं आ सकते, तो वो तो हम वहीं पे रहेंगे। तो अगर किसी को ऐसे जीवन से बाहर आना है तो उसको आध्यात्मिक पथ पर ही आना पड़ेगा। भौतिक जीवन में कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अंततः सब कुछ छिना जाता है। जैसे वो सिसिफस, ये ग्रीक लिटरेचर में आता है कि जब कोई बहुत बड़ा कुछ गलत कार्य करता था या किसी को मारना या ऐसा कुछ, तो उसको शिक्षा दी जाती थी कि एक बड़ा पत्थर का गोला उसको ऊपर उठा के एक पर्वत के ऊपर धकेलते हुए लेके जाने के लिए, और जो राजा के सैनिक होते थे वो पीछे होते थे चाबुक लेके, अगर वो रुका एक मिनट भी तो पिटाई करते थे उसका। तो बहुत मेहनत करके घंटों घंटों बाद वो जाके ऊपर लेके बैठता था, और जो सैनिक थे उसके पीछे रहते थे, सैनिक तुरंत उसको ढकेल देते थे वापस, जो गोला है वो बहुत बड़ा तो आता था नीचे तो उसको बोलते थे अभी जाओ वापस, वापस उठाओ, तो आता था वापस उठाता था। तो ये कब तक चलेगा? वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, उसका कुछ अंत नहीं है। तो वैसे ही हमारा भी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठर पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये जो संसार चक्र है वो तो हमेशा चलते रहेगा, लेकिन जो आध्यात्मिक जैसे वेद शास्त्र है वो हमको बताते हैं कि कहां पे हमको अपना निशाना लगाना है। जो हमारे कार्य करना है, कार्य तो करना है, सबको करना है, हम कार्य करने से बच नहीं सकते हैं, लेकिन वो कार्य कहां पे लगाना है उसको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिर्फ कार्य करने में निष्णात होने से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। अगर कोई बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, सक्सेसफुल एथलीट है, सक्सेसफुल क्रिकेट स्टार है, सक्सेसफुल ये है वो है, वो सक्सेस से हमारा जीवन से उद्धार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा निशाना सही हो सकता है लेकिन जो स्थान है जिसको हमको मारना है वो अगर चुक गया, जैसे महाभारत में आता है दशरथ महाराज, वो बहुत एक्सपर्ट थे, वो उनको ये विद्या थी कि शब्द वेधी बाण, सिर्फ शब्द सुन के वो बाण चला सकते थे। तो जब वो गए थे जंगल में तो सोचे कि टेस्ट करना चाहिए उसको, तो बोले कि अभी मैं यहां पे खड़ा रहता हूं और सुनता हूं। जनरली जो बाघ सिंह होते हैं वो आते हैं पानी पीने के लिए, तो आवाज करते हैं वो, तो बोला कि यहां पे जब आएंगे तो मैं बाण चलाऊंगा। तो उन्होंने सुना पानी का आवाज आ रहा है थोड़ा पीने का, तो ने बाण लगाया, जैसे ही बाण मारा तुरंत वहां से एक आदमी का चीखने का आवाज आया, उन्होंने पता चला कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो भागते आए तो देखा उन्होंने ये एक ब्राह्मण बालक वहां पे पड़ा था सीने में बाण लगा के, तो बोले ये क्या हो गया? तो हम देखते हैं उसके बाद की घटनाएं हैं जो रामायण में आती हैं। तो वैसे ही कभी कभी निशाना सही हो सकता है लेकिन जगह गलत हो सकता है। तो निशाना तो उनका सही था लेकिन वो गलत जगह पे लगा। तो वैसे ही हमारा भी जो कर्म है वो हम सिर्फ अच्छे तरह से करके हमारा हम खुश नहीं हो सकते हैं। ये भी जानना चाहिए कि वो कर्म का निशाना जो जगह क्या है, इसलिए भागवत में बताते हैं अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य समसिद्धिर हरितोषणम। तो ये जो धर्म की जो हम कार्य करते हैं अगर वो हरितोषणम नहीं है, भगवान अगर खुश नहीं है उससे, तो फिर वो निशाना तो सही लगा लेकिन जगह गलत है वो, अगर हम कार्य कर रहे हैं तो। इसलिए भगवान खुद आके ये भागवत या अलग अलग वैदिक शास्त्र हमको देते हैं कि हम जाने कि हम कौन है, भगवान कौन है, और यहां पे हम दुख क्यों भोग रहे हैं, और इतना दुख भोगने के बाद भी हम उससे सीख क्यों नहीं ले रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं अकामो सर्म कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, दैट जब हम भगवान की भक्ति करते हैं भक्तों के संग में रह के, और वो भी तीव्रेण भक्ति योगेन, प्रभुपाद बता रहे थे कल भागवतम में, तीव्रेण मतलब सिर्फ भगवान की और कुछ नहीं। हमको जानना है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें सब सेवाएं, राष्ट्र सेवा, ये सेवा, वो सेवा, समाज सेवा, सब आता है उसमें जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसको तीव्रेण प्रभुपाद व्याख्या कर रहे थे। तो जब ऐसा तीव्र भक्ति करते हैं तो ये जीवन से हम आगे जा सकते हैं। तो यहां पे ये जो अनुवाद है प्रभुपाद देते हैं कि कैसे, और ये सब हमको कौन बताता है कि शास्त्र बताते हैं हमको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो शास्त्र को पिता कहा गया है यहां पे। तो जब वो हरियश्वस को बोले कि पिता का आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसका मतलब है कि जो वैदिक शास्त्र है भगवान खुद देते हैं उनका उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। अगर उनका उल्लंघन करते हैं तो सब स्तर पे हम हमेशा दुख में ही रहेंगे। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भक्तों के संग में आते हैं, और जो भी हम काम करते हैं, कोई गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी वो क्रिया कर रहा है उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान की संतुष्टि। अगर वो है तो हम ये भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो हम यहां पे आए विराम देंगे, अगर कुछ गलती हुआ हो तो कृपया माफ कीजिए, और श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद्भागवतम की।